Corporate Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
905-272-2300,
Airwings.ca. 416-502-8000, स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकता, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक। 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। Paradontics, orthodontics, dental implants, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 905-232-5678 मिसिसागा, 416-757-9999 स्कारब्रो।
11वां सालाना हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल,
जून 15 और जून 16, सैटरडे और संडे
एट सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा। फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग।
परफॉर्मेंस बाय अली हैदर एंड लाइव परफॉर्मेंस बाय अमानत अली।
तुझे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान।
फुल हंगामा, फूड स्टॉल्स, किड जोन,
अरबिक डबका परफॉर्मेंस, तुर्किश सूफी डांस, इंटरनेशनल हलाल फूड क्विजीन।
फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आमिर शमसी 416-662-7861, 416-662-7861।
खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं कि आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਗਮਲੇ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਤਨੂਰ ਮੰਜਾ ਤੇ ਟੋਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 12050A4 ਰੋਡ ਕੈਲੇਡਨ 9058409000 कैलेडन सब्जी फार्म
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा
कौन से काम
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ
बस इतनी छोटी सी बात पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी
मुझे उनका एड्रेस बताओ मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ
जी जी बिल्कुल पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन पायल ज्वेलर्स कॉल करें 9057907879 दैट इज 9057907879
मम्मा लंच रेडी है बहुत भूख लगी है
या मॉम मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया
बाय द वे क्या बनाया है
जो टीवी देखते हुए खाएगा उसके लिए करेले और जो मोबाइल हाथ में लेकर खाएगा उसके लिए टिंडे और जो तमीज से सबके साथ मिलकर खाएगा उसके लिए बिरयानी
यही है मीनार बासमती राइस का मजा लंबा खिलता खुशबूदार दाना पर जब भी खाना मिलकर खाना मीनार हर दाने में प्यार
जब रहमतों का नजूल हो तो एक अलग ही मजा है उन्हें दुआओं की चादर में समेटने का जज्बाए ईसार जगाकर आओ हम सब की खुशियों का हिस्सा बन जाएं दुनिया भर में खुशियों की तरसील का एक ही नाम gondalbrothers.com गोंदल ब्रदर्स की जानिब से दिली ईद मुबारक
ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-450-2828
जी साहब प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ मैं आरफा मुजफ्फर आज थोड़ा सा क्विक चलते हुए क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 30 तक हम टाइम दिया करते होते हैं ताकि हम प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए आगे की तरफ चलें मगर इस वक्त तकरीबन आपसे 4-5 मिनट के बाद मेरे साथ होंगे जनाब शहीन सहबाई साहब मेरे साथ होंगे आपको बताइए कि आज जो जनाब फायजीसा साहब हैं उन्होंने बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की दौरान समाअत लीक होने वाली ऑडियो के हवाले से वाजे किया है कि इमरान खान की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब में चीफ जस्टिस ने सदर मियां अकील अफजल जनरल सेक्रेटरी और ये तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है बाज़ोकात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी का पश्च मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले लिखा करता था मेरी वालदा सैयदा काजी ईसा भी आर्टिकल लिखती रही हैं बहुत तहकीक के बाद लिखा जाता था लेकिन आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया और जिसके दिल में जो आता है वो लिख देता है अच्छा लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। जनाब भुट्टो साहब के केस के फैसले के बारे में उन्होंने कहा 627 पैराग्राफ लिखे और सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद कोई और मौजूद न हो एज कम्पेयर टू भुट्टो साहब। फायज साहब ने यह भी कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका है, इसलिए अब इस पर राय दी जा सकती है। मैंने इंक्वायरी करवाई है जिसमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। आईटी स्टाफ ने बताया कि ऑडियो के अंदर आने वाली कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। इस तकरीब से जस्टिस तरमिनोला ने भी खिताब किया और ऑडियो लीक के मामले को गैर अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में गुफ्तगू थी। जस्टिस तरमिनोला ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान भी इसमें शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समात के दौरान जजेज और इमरान खान के दरमियान मुकालमों पर मबनी एक मुबैना ऑडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें बानी पीटीआई को नैब तरामीम के हवाले से बात करते हुए सुना जा सकता है। इस तकरीब में आपको बताइए समात में जनाब इमरान खान साहब ऑडियो लिंक के जरिए शरीक थे। ऑडियो में उन्होंने केस से कतः नजर जजेस को मशवरा दिया कि चेयरमैन नैब को कोर्ट को लगाना चाहिए, जिस पर जजेस ने उन्हें ताकीद की कि आप अपने दलायल को केस तक ही महदूद रखें। अभी ऑडियो लीक हुई है और उसके बारे में बात करें, अभी थोड़ी देर के बाद किसी लम्हे भी हमारी मुलाकात हो सकती है जनाब शाहीन सहबाई के साथ, आप मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में जो बजट में चेंज आया उसके बारे में बात करेंगे। एक और खदशा जो दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको पता ही है कि हम जब भी तारीख का हवाला देते हैं तो तारीख में सबसे ज्यादा जो मुजाहमत पेश की गई थी वो केपी के खैबर पख्तूनख्वा से दी गई थी। सबसे ज्यादा मुजाहमत जितने भी फातेह दर्रा खैबर के रस्ते आए थे। अब कहा जाता है कि जाहिर है अमेरिका इन द लॉन्ग रन सदर बाइडन के इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के बाद वो जीते थे और बाइडन से एकदम से पिसपाई उनकी बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना और कहा जाता है कि जिसपे उन्होंने बड़ी मतलब उनकी ले दे भी हुई। अब अगला इलेक्शन नवंबर में एक्सपेक्टेड है, मगर पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल अभी तक तो करने नहीं दिया गया, ना ही कोई अड्डे दिए गए, मगर ख्याल किया जाता है कि अब एक जो भी समझ लें, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी व नासिर रहे, मुझे यकीन है कि अल्लाह बेहतर फरमाएगा। मगर अगर अवाम में जो हलचल नजर आ रही है उसके आसार कुछ इतने मुनासिब दिखाई नहीं दे रहे। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन के जेलेंस्की साहब जो हैं वो G7 की समिट के जितने 7 बड़े मोहरे जो इस जंग को तवालत दे रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए वो भी इटली पहुंचे हुए थे। इसके बाद उसके अलावा उन्होंने सऊदी अरेबिया का भी दौरा किया, उन्होंने अपने 10 नुकात पेश किए हैं और स्विट्जरलैंड ने उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। तमाम ममालिक को दावत दी गई है जिसमें टोटल 167 कंट्रीज हैं, उनमें से 94 मुल्कों ने दावतनामा कबूल किया। पाकिस्तान ने इस दावतनामे को कबूल नहीं किया, जिसमें पाकिस्तान ने जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है और जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं पाकिस्तान ने गैर जानबदारी का जिक्र किया है। बट ऑन द अदर साइड अगर इसी खबर को मैं आगे की तरफ से भी देखूं तो ये भी खबरें लीक हुई थी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असलाह फराहम किया विच रशिया विल नेवर एक्सेप्ट। मगर आज उन्होंने कहा है कि हमने तो वो असलाह फराहम किया था जो कि किसी लिहाज से भी जंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। मगर इस हवाले से तंबीह की गई है पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ममनुआ असलाह जो है वो पाकिस्तान यूक्रेन को न बेचे। और इस्लामाबाद ने यकीन दिलाया है रशिया को कि वो किसी किस्म का भी असलाह यूक्रेन को फराहम नहीं करेगा। ये रूसी सफीर का एक बयान है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का मौकफ है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा और पाकिस्तान जो है वो खित्ते में बाकी ममालिक की तरह अपनी गैर जानबदाराना पोजीशन को मेंटेन करेगा। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग इस बार दो ईदें हो रही हैं, एक दो भी नहीं बल्कि शायद तीन की तवक्को की जा रही है। एक ईद जो कैलकुलेटेड मून के लिहाज से दैट इज ऑन संडे, और जो लोग चांद देखने पे यकीन करते हैं वो फिर चांद का इंतजार करेंगे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन मंडे एंड ट्यूजडे। ये भी एक बात हो गई। अब संडे की ईद का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो मैं उससे पहले थोड़ा सा तारीख के झरोके की तरफ जाऊंगी। आपको पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक से अपनी जिंदगी का आगाज किया और आपने तबलीग वहीं पे अपना पहले सादिक और अमीन अपने आप को जाहिर साबित किया। उसके बाद फिर आपने वहीं से ही आपको वही पहली वही आती है और वहीं से आपने अपनी तबलीग का आगाज भी किया। मक्का मौजमा में आपने बहुत सी सख्तियां झेली। फिर एक स्टेज थी कि आपको वादी शैब अबी तालिब में मुकैद कर दिया गया था, जिसमें आप एक अरसा तक मुकैद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फिक्र नहीं था, मगर जितने नए इस्लाम कबूल करने वाले थे या आपको फॉलो करने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला पे वहदानियत पे यकीन करने वाले थे, यानी ये वो स्टेज थी जिसमें बहुत मुश्किल दिन थे। और काबा में अभी भी ये जगह देख सकते हैं, मुझे इस दफा जाने का मौका मिला तो मैं खुद भी उस जगह को देख के आई थी। तो किस तरह से ये लोग मुकैद रहते, एक घाटी है जिसमें एक साइड पे अबू सुफियान की घाटी है, ये इनके अबू तालिब चचा बड़े वेल सेटल्ड थे, अमीर थे, और उनकी वादी में हजरत सिर्फ अबू तालिब उस इलाके में जा सकते थे क्योंकि आप बहुत बारसूख थे। यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का आगाज किया और आप मक्का मौजमा से मदीना पाक की तरफ रवाना हुए। मदीना पाक में आप जब पहुंचते हैं तो मदीना पाक में पहुंचने के बाद जो मदीना के लोग थे उन्होंने बड़ी पुरजोश वेलकम किया उन तमाम लोगों का। आप जाहिर है वहां पे अभी तक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां लाना चाहते थे, मगर अभी तक वहां कोई मस्जिद नहीं थी। तो वहां पे पहली जो मस्जिद तामीर हुई थी दैट इज नोन एज मस्जिद कुबा। उसके बाद जाहिर है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद नबी, दो बड़ी मसाजिद का जिक्र किया जाता है क्योंकि मस्जिद उल कुबा इस्लाम में पहली मस्जिद मदीना पाक में है। बाय द वे, जब मैं ईद उल अजहा का जिक्र कर रही हूं तो सेलिब्रेशन स्क्वेयर, बिल्कुल सही सुना, सेलिब्रेशन स्क्वेयर जिसको हम मिसेस सागा सेलिब्रेशन स्क्वेयर भी कहते हैं, ये हियर ओंटारियो एंड बर्नथोर्प के इंटरसेक्शन पे है। ईद की नमाज की इमामत कराएंगे कारी शेख असफर साहब करवाएंगे, जो मस्जिद कुबा के इमाम भी हैं और सऊदी अरेबिया की बहुत सी मसाजिद में आपने तरावीदी अदा की। ये हैं वो, बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं, वो नमाज अदा करवाएंगे। कब? दैट इज संडे का दिन है, सुबह 10:30 बजे है, सेलिब्रेशन स्क्वेयर में है। और मैं अक्सर मसाजिद अपने लिहाज से करती है, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी गैदरिंग इंशाल्लाह होगी, मगर आप फिक्र मत कीजिएगा, बेशुमार पार्किंग आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फॉर फ्री ये पार्किंग अवेलेबल है। ईद की नमाज आइए अदा करते हैं सेलिब्रेशन स्क्वेयर में सुबह 10:30 बजे। एक ही नमाज सेलिब्रेशन स्क्वेयर में होनी है, एक ही नमाज, और जो कि सेलिब्रेशन स्क्वेयर में 10:30 बजे, सेलिब्रेशन स्क्वेयर में 10:30 बजे ये नमाज अदा की जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके हवाले से मैंने आज रिक्वेस्ट की जनाब शाहीन सहबाई साहब की, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अपनी मसरूफियत में से टाइम देखते हैं। हमारी भी मोहब्बत है कि हमें आपकी बात पे बड़ा, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपकी बात पे यकीन करते हैं, उस हवाले से मैं एहसानमंद हूं। शाहीन सहबाई साहब आप मेरे साथ शामिल हुए, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी ईद उल अजहा की बहुत मुबारक हो। सर बहुत मुबारक हो, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लिए बगैर दो तीन जो हमारे कंसर्न्स हैं, पहला कंसर्न तो मैं यही ले लेती हूं कि आज फौज के बजट के हवाले से बात पहले कर लेते हैं अगर आप चाहें, या हम उस हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको पता ही है कि एक जज ने जब ये पैगाम दिया कि पैगाम मिला कि आईएसआई के कोई साहब चैम्बर में मिलना चाहते हैं, और उन्होंने बाकायदा फिर लेटर लिखा कि मेरे घर का मीटर भी जलाया गया, कुछ इसके बारे में फरमाएंगे अगर आप इसको कवर कर दें तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर, कि अगर अब 9 मई के वाकयात हैं और ये टेररिस्ट एक्ट के लिहाज से जो कोर्ट टेररिस्ट कोर्ट है उसका ये फैसला है, वेयर एज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि वो जज बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा जज है, मगर उसको हरेस किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया, एक तो आप मुझे बुलाने का, आपको भी और सबको सलाम।
वालेकुम सलाम
सर। जज साहब ने जो लेटर लिखा है ये एक कंटिन्यूएशन है जो छह जजेस के लेटर से शुरू हुआ था काम, और जो इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है फौज के खिलाफ और बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं, ये उसके रिपल इफेक्ट थे। पहले छह जजेस ने लेटर लिखा, फिर एक और जज साहब ने लिखा, अब ये भी सेशन जज या जूनियर जज हैं जिन्होंने ये लाहौर हाईकोर्ट को लिखा है, और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीर भी फरमाई है और जिसमें खुल के उन्होंने सारी बातें कर दी। उसमें कहते हैं कि जी हम सबको मिलकर एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहिए और रोकना चाहिए इनको ये जो कुछ कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और जज सिटिंग जज है वो और क्या बात करेंगे। ये अब जिसे कहते हैं ना स्नो बॉल इफेक्ट, जो इमरान खान साहब ने काम शुरू किया है उसका अब ये स्नो बॉल बनता जा रहा है। नीचे से जब बर्फ ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा वो ढेर हो जाता है।
बिल्कुल सही।
ये एक तो बहुत अच्छी बात है कि लोग खड़े हो रहे और ये इनके ये जो क्या कहना चाहिए डिक्टेटरशिप और फस्ताइयत जो है, जो जिस तरीके से ये औरतों को और बच्चों को और लोगों को पकड़ रहे मार रहे, अत्यंत जजों को ही अपने माल बना लिया यहां तक हो चुका है। यानी इससे ज्यादा और मार्शल क्या होता है और फस्ताइयत क्या होती है कि आप जजों को बंद कर दिया कमरे में, कोई आ सकता है ना जा सकता है, सारे केस वेस जो है वो गायब।
सर मुझे बड़ी हैरत है कि एक जज जो है उसके घर में आके मीटर का भी, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने, बल्कि जो आईजी पंजाब हैं जनाब उस्मान साहब डॉक्टर उस्मान, उनसे जब उन्होंने सवाल किया या वो उस इलाके के जो डीपीओ हैं उनसे जब सवाल किया कि आप लोगों ने अदालत को क्यों बंद किया, हालांकि वहां पर बाकायदा गोली चली थी और ट्रांसफार्मर को गोली लगा के गोली मार के बिजली उड़ाई गई थी, मगर कहा जाता है कि उस दिन मुकदमों का फैसला होना था और उन्होंने बिजली को भी मतलब ताकि कोर्ट लगे ही ना, तो सवाल बड़े डायरेक्ट थे, मगर आईजी जो हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान वो आएं बाएं शाएं करते रहे कि हमें इंटरनल मिनिस्ट्री जो है उसके साथ मिलके जियो फेंसिंग करना होगी। तो इंटरनल मिनिस्ट्री में है कौन? मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी तो एक नंबर के मतलब उनके लिए अगर पाकिस्तान डूब भी जाए तो इट विल नॉट इफेक्टिव एट ऑल।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये जो फायरिंग वायरिंग चाहिए थी ये तो उस जब जज साहब ने कहा कि जी मैं नहीं सुनता आपकी आईएसआई से नहीं मिलता और बस ठीक है, तो फिर उन्होंने ये डराने धमकाने की ये जो मॉब जो होते हैं जो माफिया जो होती है जिस तरीके से ऑपरेट करती है, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को जख्मी कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये फौजी जो है ये अब बिल्कुल एक माफिया की तरह हो गए। और खासकर आप जो ये पंजाब के आईजी साहब की बात फरमा रही है, ये आईजी साहब ने तो अपने आप को इन माफिया का हिस्सा बना लिया है। ये जिस दिन अपनी नौकरी से उतरेंगे ये पाकिस्तान में एक दिन नहीं रह सकते, भागेंगे वहां से। और जिस तरह ये सारे के सारे जो फौजी वौजी जो बैठे हुए हैं, जब ये जिस दिन इनका आखिरी दिन होगा तो फिर पाकिस्तान में इनका आखिरी दिन होगा। कि वो गरीब इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा कर, जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसका भट्टा बैठ जाता है, हद तक क्रिकेट में भी जाके घुस गए और दो मैच के बाद ही टीम फारिग हो गई और वो पता नहीं क्या क्या सियासत चल रही है, क्या क्या चल रहा है। तो ये एक बड़ा डार्क किसे कहते हैं ना तारीख तरीन दौर है ये पाकिस्तान के लिए, और इसमें एक जो उम्मीद की किरण है वो तो ये है कि जी लोग बड़ी बड़ी तादाद में एक तो इमरान खान के पीछे खड़े हैं और दूसरा ये कि इमरान खान बाकी सब लोगों जो पॉलिटिशियन हैं जो वर्दी के पीछे छुप के बैठे हुए उनसे ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियन आपस में मिल जाएं वरना ये सब को एक एक करके खा जाएंगे। अब देखें अब बातचीत उनकी शुरू होगी तो क्या करते हैं वो।
सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिशियंस आपस में मिल जाएं वरना ये जो पीछे से डोरियां हिलाने वाले बड़ा करक कर देंगे, बट आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने यही तो कानून पास करवाया था, यानी आपस में यही तो एक इनका मुत्तफिका फैसला हुआ था, बट उसके बावजूद इस वक्त जितनी भी पार्टियां हुकूमत कर रही हैं वो सब जूते चाट के ही तो हुकूमत कर रही हैं।
देखिए जरदारी साहब का तो कैरेक्टर इस किस्म का जो सियासी रोल है ना बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि गंदा रोल है। आपको याद होगा 2006 में बेनजीर और जाके उन्होंने नवाज शरीफ से सऊदी अरब में एक मिसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और उसमें मेन पॉइंट ये था कि हम लोग आपस में ना लड़े और ये हुकूमत तो फौजियों के खिलाफ हम इकट्ठे खड़े हों और एक दूसरे को हम ना गिराएं ताकि उनको मौका मिले। जैसे ही जरदारी साहब को मौका मिला उन्होंने आके वो चार्टर शार्टर सब फाड़ फूट दिया और एक जगह उन्होंने तो कह दिया कि जी मैंने जो वादे किए थे या जो बातें की थी वो कोई कुरान और वो हदीस थोड़ी है, जो होते थे सियासी बातें वादे होते थे वो सब भूल गए और अपना खाना पीना फिर शुरू कर दिया। आजकल भी यही हालात है, ये सारे डिवाइडेड है और फौजी सब इनको मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। जिस दिन इनको अकल आ गई कि जी अगर हम इकट्ठे हो गए मिल गए एक पॉइंट या दो पॉइंट पे ही कम से कम मिल गए कि ये काम मिलकर हम करेंगे तो ये फौजियों को फिर सही पता लगेगा। लोग तो ऑलरेडी हैं इनके खिलाफ, ये जो चार छह जो लीडर हैं जो पार्टियां हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई ऑलमोस्ट, अगर फिर भी आकर ये इकट्ठी हो जाएं तो बहुत लोगों को सपोर्ट मिलेगी और फौजी कांपेंगे फिर, मगर ये नहीं कर रहे तो मारत इनको पड़ रही है और जिस दिन ये कोई और आ गया तो ये और मारनी पड़ेगी इनको। अजीब और गरीब हालात है इनके, समझ नहीं इनको आ रही कि क्या करें।
मेरा ख्याल है बुखलाहट का एक आलम है। अब बुखलाहट का आलम सर मैं जब ये देखती हूँ कि जाहिर है एक इदारा जो जिसके जिम्मे मेरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज हैं, ये जो लोगों को उठा लिया जाता था या जबरदस्ती की जाती थी, ये हमने केपी खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं सुनी थी, बलूचिस्तान की आवाम ने इससे बहुत मार खाई इससे और बेशुमार लोगों को। बट नाउ इट इज वेरी कॉमन इन पंजाब, यानी आप देखिए कि इमरान रियाज साहब उमरे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, एहराम में मौजूद हैं और फ्रॉम नो वेयर समबडी उनके खिलाफ FIR दर्ज करता है और FIR दर्ज करने में उस पर इल्जाम लगाता है कि जिन्होंने मुझे प्लॉट भेजा तो मुझे न फाइल दी न मुझे अपडेट किया और उनको वहां पर रोक लिया जाता है। ये कौन लोग हैं जिनको एकदम से खड़ा करके FIR उनके नाम से दर्ज कर ली जाती हैं? तो पंजाब अगर और अगेन कौम को मुगालते में रखा जाता है कि बड़े मियां साहब जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैं बुग़्ज़ की सियासत पे बिलीव नहीं करता, वेयर एज उनकी जो बेटी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रही हैं, चाहे वो पंजाब का कोई पुलिस का अफसर हो या जो कोई भी हो, मार जिलाओ घिराओ लोगों को अरेस्ट करना, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जाना, ये कॉमन वतीरा है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जिनके जिम्मे इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, मेरे इदारे जिनके ऊपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आम अवाम की सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो लोग कहां जाएं? दे जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट सम पीपल या क्या करना चाहते हैं?
जिनकी आप जिम्मेदारी याद दिला रही है वही तो करने वाले हैं ये सारा काम। अब मोहसिन नकवी साहब को जब लगाया गया था ओबूरी चीफ मिनिस्टर
जी
तो वो लग गए एक दफा तो वो तो हटने के लिए तैयार ही नहीं थे, पूरा साल उन्होंने चला दिया, हालांकि 3 महीने के लिए होता है वो, इलेक्शन ही नहीं कराया इन्होंने। सबका पीछे एक ही माफिया है, एक ही माफिया है और वो माफिया का अगर आप सिरा ढूंढे तो वो सीधा GHQ में जाता है, क्योंकि उनको असल में परेशानी है। बौखलाहट तो वहां हर एक को मार रहे हैं, पीटर मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने छोटी जगह से निकाल के बड़ी जगह बैठा दिया, वहां भी आकर उन्होंने वही काम करना है जो पहले कर रहे थे। ये आप कह रही है कि जी मरियम साहिबा तो उनके हाथ में खिलौना है, गुड़िया है जिससे वो खेल रहे हैं, वाह बाकी सब काम जो वो कर रहे हैं उनकी भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ना कहे किसी को कि ये मत करो ये करो वो करो, वो पीछे से ऑर्डर आता है, वो उनके IG साहब जो है वो ऑर्डर पता भी ना हो शायद मरियम साहब के क्या हो रहा है, किसको पकड़ रहे हैं किसको नहीं पकड़ रहे, मगर वो जाती अब उनकी एक खिलौना मिल गया है, उनको बैठ के तस्वीरें खिंचवाना टिकटॉक बनाना जाना आना बस प्रोटोकॉल ये वो, बड़ी ही अफसोसनाक बात है। ये सियासतदान जी छोटे छोटे अपने जो फायदे होते हैं उनके लिए ये जिसे कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए पूरी गाय और हलाल कर देते हैं। ये हाल है इनका।
वेरी सैड, वेरी सैड। सर अगली बात जो करना चाहती हूँ कि देयर वाज अ टाइम के आर्मी के बजट में कमी की गई थी, हालांकि तब हम ये कहते थे कि इंटरनेशनली जाहिर है अगर हर जगह पे है तो एक मुनासिब तरह से, क्योंकि आर्मी के पास बहुत सारे और इदारे हैं जिससे वो अपने अखराजात को पूरा भी करते हैं, मगर ये कंजेक्टिव सेकेंड ईयर है। लास्ट ईयर भी आर्मी के बजट में इजाफा किया गया था मगर इतना बेपनाह इजाफा नहीं किया गया था। इस दफा आर्मी के बजट में 318 अरब रुपए का इजाफा किया, विच इज बहुत ही एक बड़ा फिगर है।
अब ये देखिए मैडम, ये इसलिए इजाफा हो रहा है कि ये आर्मी जो है ना ये एट वॉर है, ये मैदान जंग में है,
एट वॉर विद द नेशन,
पूरे अपने 25 करोड़ लोगों के साथ ये लड़ रही है। इनके बजट में तो इजाफा होगा ही होगा क्योंकि जो लोग बैठे हैं ऊपर वो तो इन्हीं के सारे क्रोनीज कह लें या जो भी डमीज कह लें, जो उन्होंने ही करना है ये, और ये पूरे पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और इजाफा पिछली दफा जो कहते हैं इजाफा हुआ था, एक दफा उन्होंने कहा कि जी हमने बढ़ाया नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा बजट कम हो कट गया, मगर इस दफा तो खुलेआम हो रहा है सब कुछ। यानी जो इन्होंने टैक्सेस लगा रहे हैं, जैसे एक साहब ने कल एक सवाल किया था, बड़ी उनको मैं डांट देता हूं कि जो उन्होंने जर्नलिस्ट से खड़े होकर सवाल किया कि जी आपने 45,000 वाले का तो सिम बंद कर दिया और जो अरबों खरबों के जो टैक्स हो रहे हैं उनको आप पूछते ही नहीं है, और जो दुबई में महलात बना रहे हैं उनको नहीं पूछते। ये निजाम सारा उल्टा है जिसे कहते हैं, और ये गलत बुनियादों पे खड़ा हुआ है। इसमें से एक तिनका इधर से उधर हिला तो ये सारा का सारा महल जो है ना नीचे आ जाएगा, और अवाम तैयार बैठे हैं कि किस दिन हम निकल के इनका सर फोड़े। ये बात एक पक्की है, इनको मौका मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अवाम सारे तैयार है। कहां तक बर्दाश्त करेंगे ये सारी जो लादे जा रहे हैं, हर चीज अवाम के ऊपर, हर चीज अवाम पे, खुद बैठे मजे कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। और मैं जब बात करती हूँ तो देखिए उसमें हर इंसान की अपनी स्वाबदीद है कि आप किस सिमत में लेके जाते हैं। मैं हम अफवाज के बारे में जब बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा आम जवान, जो मैं गिलगित की अगर आपसे बात करती हूँ तो उसका जो जॉब का टाइम बहुत कम है, क्योंकि सियाचिन पे जब ये ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से तो वो असल प्राइस वो पे करते हैं, मगर चंद फैसला करने वाले अपने जाती मफादात से अपने उन लेफ्टिनेंट जनरल्स को भी भूल जाते हैं जिनकी अगली प्रमोशन के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी होती है, और फिर वो अपनी एक्सटेंशन देते हैं और अपने लिहाज से अपनी काबीना अपने इर्द गिर्द तामीर करने के बाद अपने जाती मफादात के लिए चलते हैं। हम उसके खिलाफ जरूर हैं। सर आपकी भी मुलाकात होती होगी बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर से और सीनियर ऑफिसर से मुलाकात होती होगी। मेरी कल रात में भी आर्मी के चंद एक इंतहाई सीनियर लोगों से तीन एक लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तीनों एक जगह पे थे। एंड इन साइड दे डोंट वॉन्ट, उनका एक ही क्वेश्चन था, एक कर की गया है, इन हो की गया है, विच इज दे मेंट जनाब हमारे जो इस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, यानी नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग वाई ही इज डूइंग ऑल दिस।
सर कर की रहा है, सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि अपने आप को बचाओ, जब तक बैठ सकते हो बैठो और फिर उसके बाद मुल्क छोड़ के भाग जाओ। सारे फौजियों का ये हाल है। अब आप कहें कि जी फौज तो इनके साथ है और फौज तो खड़ी है, बड़े बड़े बयान देते हैं कि जी फौज मुल्क के लिए खड़ी है और कुर्बानियां दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सही है, लेकिन फौजियों के जिस घर में आप चले जाएं वहां इनको गालियां पड़ती हैं। फौजियों के जितने इलाकों में आपने देखा जो वोटिंग हुई है, सब जगह इमरान खान को वोट मिले, क्योंकि लोग तो उनके फौजी लोग इनसे नाराज नहीं है। ये 2-4 का टोला 6 का 10 का टोला होगा, मगर ये क्या, अब उनके कब्जे में है और उनको समझ नहीं आ रही कि जी हम इसमें से निकले कैसे, क्योंकि जिस दिन ये हटेंगे तो उस दिन इनको जो पकड़ा गया था फिर वो तो मारा गया।
ये बिल्कुल वही मामला है कि जब वो कहते हैं कि 65 की 71 की जब वॉर हुई थी 65 की जब वॉर हुई थी अयूब खान और उनको वो कुछ और चाह रहे थे, उनके जो जर्नैल थे वो अपने लिहाज से फायदा चाह रहे थे। एनीवेज मुझे सर आप ये बताइएगा कि इस वक्त आपको याद ही होगा कि जनाब बाजवा साहब शादी पे जाते हैं, ही वॉज ऑल अलोन, जनरल कियानी की एक मैंने पिक्चर देखी, यानी ये बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम बाज़ औक़ात अकेले खड़े होते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि उससे भी जो इस वक्त ज्यादती करें वो सबक नहीं सीखते हैं कि हम भी एलियनेट हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे, फिर हम सारे जेबों में कुरान लेके फिरेंगे।
यही मैं कहने वाला था कि बाजवा साहब को तो इतना परेशानी है कि वो जेब में कुरान लेके फिरते हैं कि जी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। उस वक्त जब वो ताकत में थे तो उस वक्त जो करने का काम था वो नहीं किया, अब ये सारी उम्र भुगतेंगे, लोग उनको टूटू करेंगे, गालियां ही देंगे, और इनके साथ कोई ये जो आजकल कर रहे हैं इनका भी दौर तो बहुत छोटा सा, इसको जितना लंबा खींच लें लास्टिक को आप इतना लंबा खींचेंगे और खींचेंगे, एक दिन आएगा कि कड़क करके टूट जाता है। तो ये खींचे जा रहे हैं, आवाम को दबाए जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं लोग महंगाई से। और ये आपने जो बोझ जितने बढ़ा दिए टैक्स और ये और नॉन फाइलर और फाइलर और पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ रहा है कि जी फाइलर के लिए अलग कब्रिस्तान बनेगा तो नॉन फाइलर के लिए अलग कब्रिस्तान बनेगा, लोग तो इंजॉय इसको भी इंजॉय कर रहे हैं, आखिर क्या करें। लेकिन ये कि इनके पास बौखलाहट ही बौखलाहट है और कुछ समझ नहीं आ रही किस चीज में हाथ डालते हैं, फेल हो रहे हैं। अभी और कितने दिन कर सकते हैं ये अपने झंडे के।
मेरा सर आखिरी सवाल आपसे, आपका मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, पहले एक जज खत लिखते हैं और इलामा इकबाल की पोएम जिसमें अपना ना सर झुकाने का जिक्र करते हैं, फिर छह जजेस का खत आता है, काजी फायजी साहब ने उस पर शुनीद भी की, अब ये एक जो जज साहब हैं इन्होंने सरगोधा से बड़ा वाज़े मिसाल, सरगोधा का अदालत बंद भी एक दिन होती है, उनको धमकियां भी दी गई, उनका बिल्स भी बढ़ाए गए, बिजली का बिल और बाकी बिल्स भी उनके बढ़ाए गए, तो जिस पे लाहौर हाई कोर्ट का जो जज है उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे सवाल किया डॉक्टर उस्मान से कि आईजी साहब ये आपके बस का रोग नहीं है, ठीक। आप मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी खुलेआम अब बातें हो रही हैं तो फैज ईसा साहब को क्यों नजर नहीं आ रहा कि कोई बाहर से मदाखलत कर रहा है हमारी अदालतों में, और जो जजेस हैं वो
सब नजर आ रहा है, मैं उनको बिल्कुल उनके सामने हो रही है खुली मदाखलत हो रही है, सब नजर आ रहा है, लेकिन वो अपने जाती फायदे में बैठे हुए हैं कि जी मुझे किसी तरीके से और एक दो साल मिल जाए तो बस मैं इसमें खुश हूं, बाकी जाए पाकिस्तान पहाड़ में, पूरा पाकिस्तान के आवाम जाए पहाड़ में, उनको तो उनके सामने तो खुली किताब, ये सारा जो कुछ हो रहा है सारा पाकिस्तान देख रहा है, तो वो नहीं देख रहे क्या मतलब है, वो चीफ जस्टिस है, अगर वो नहीं देख रहे तो उनको घर जाके तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, वरना उनका काम कौन करेगा फिर। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, पहले हालांकि फायज ईसा साहब जब बड़े इनकलाबी थे, आपको याद होगा जब इनका घर वर पकड़ा गया था लंदन में तो असेंबली में जाकर तकरीर करना शुरू कर दी खड़े होकर, और उनकी बेगम के साथ वो जुलूस लेके चले जाते थे और जाके पता नहीं क्या क्या प्रोटेस्ट करते थे, और अब वो सारा कुछ भूल गए और अब जाके वो बैठ गए ऊपर के। मैं तो ना टीवी देखता हूँ ना अखबार पढ़ता हूँ ना कुछ नहीं करता, तो करते क्या है फिर अभी कि पाकिस्तान का जो हर्चर खराब हो गया आपकी वजह से, वो इन्होंने ये सारे फैसले दिए जी बैट हटा दो तो ये कर दो तो पकड़ लो मत करो, ये सब करके अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें फायदा कब मिलेगा, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई फायदा दे।
नहीं वो कानून में तरमीम करके उम्र की मुलाजमत की उम्र बढ़ाने जा रहे हैं,
और आईन में तरमीम, कानून तो रोज बदलते हैं, आईन में तरमीम करने जा रहे हैं, और वो भी किस तरह से कि पूरी जाली असेंबली उसमें जो इजाफी सीटें हैं अकलियतों की सीटें वो भी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, जिन्होंने एक सीट खुद जीती है उनको 10 सीटें फालतू में मिल रही है कि जी मेरे नाम पे आईनी तरमीम कर दो तो बस बहुत अच्छा होगा। अगर ये हालत है चीफ जस्टिस की और आर्मी चीफ की और जितने बड़े बड़े चीफ बैठे तो मुल्क का बेड़ा तो उन्होंने वैसे ही फैसला कर दिया है कि जी घर की होना है फिर अल्लाह मालिक है, बाकी हम
अल्लाह करे कि वो इदारे फाल हो जाए जिनके जिम्मे मैं अगेन मेरी तो ख्वाहिशें तो इंसान कर ही सकता है ना कि जिनके जिम्मे मुल्क की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, मगर वो कहते हैं ना कि जब खुद ही آپ اپنے دشمن ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں. میرے وہ ادارے کاش کے انڈرسٹینڈ کر لیں. اینی ویز سر, آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ ہی کی موجودگی میں ایک کوٹ ان کوٹس کرتی ہوں کہ یعنی جج نے اتنا کھلا پیغام دیا, ڈی پی او سرگودا سے انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت سرگودا جوڈیشل کمپلیکس کو بند کیا گیا تھا, اور ڈی پی او صاحب کہتے ہیں سرچ آپریشن کے لیے, کیونکہ وہاں پر ٹیررسٹ تھریٹ تھا. ٹیررسٹ تھریٹ باہر تھا کیونکہ باہر جو ٹرانسفارمر تھا اس پہ گولی لگائی ماری گئی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس شخص کو ڈھونڈا جس نے جج کو دھمکیاں دی یا جس نے اس ٹرانسفارمر پہ گولی ماری. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہے.
سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ خود ہیں, اور ٹیررزم کے نام پہ دنیا بھر کا جینا حرام کیا ہوا ہے. سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں یہ تو ٹیررزم تو خود پھیلا رہے ہیں,
مگر اپنے ہی ملک میں پھیلا رہے ہیں نا, مطلب
اپنے ملک میں. اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو تھپڑ مار دے تو وہ بھی ٹیررزم ہے آج کل. یعنی اس کی انہوں نے جو ڈیفائن جو کیا, ڈیفینیشن جو دی ہے ٹیررزم کی, وہ یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو یہ بھی ٹیررزم. چلیں جی,
اب آگے آگے کیا ہوتا ہے اب دیکھتے چلے جائیے گا, مگر مجھے لگتا ہے انریسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جناب شاہین صاحب, بھائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. شاہین صاحب, بھائی صاحب سے آپ کی بات کرائی. ہر انسان کا اپنا ایک تناظر, ایک نظریہ ہوتا ہے. آف کورس میرا کنسرن ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. میں ایک اور چیز جب اس کو شیئر کر رہی ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے یا ان کی جو ایک عمارت ہے, وہ میں بلکہ کوشش کی کہ ان کا جو وہاں کا سٹاف ہے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے کے آ سکوں. ہماری ٹیم کی ایک ممبر ہیں صبح ناز, شیز ان پاکستان, اور پاکستان ریڈیو پاکستان سے نیوز کاسٹر تھیں وہ, اور ان سے میری بات ہوئی. کہتے ہیں کہ تھری اسٹوری بلڈنگ تھی, پھر اس کو ملٹی اسٹوری کیا گیا. اس کے بعد جب محسن نقوی صاحب نے چارج لیا تو انہوں نے اپنے آفس کی رینوویشن پہ, اس کو نیا فرنیچر دینے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. وہ اپنے آفس سے میکسیمم تین بار, مگر شاید کہیں ایک آدھ دفعہ اگر آئے ہوں گے, آل ٹوگیدر پانچ بار. ناؤ انہوں نے اس کو ڈیمالش کرنے کا کہا ہے کہ ہمیں نئی طرز کی بلڈنگ چاہیے. کرکٹ آپ کی چل نہیں رہی, کھیل آپ سے کھیلا نہیں جا رہا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. یہاں سے میں آپ کے ساتھ ایک نیوز اور بھی شیئر کرتی چلوں. ایکچولی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بلڈنگ لی ہے جو کہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پلیئرز جب کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی اکاموڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب بنیادی طور پہ یہاں پر ایک ملٹی اسٹوری ہوٹل بن رہا تھا جو بھی بلڈر کوئی بنا رہا تھا, مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کیا اور اس کو بین کروا دیا. الٹیمیٹلی صاحب وہ کہتے ہیں, سورسز سیڈ دا بورڈ ہیز پرچیز دا ملٹی اسٹوری بلڈنگ فار چار بلین روپے میں. یہ انہوں نے خریدی ہے اور اپارٹمنٹ بلڈنگ یہ ہے جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام اس وقت جاری ہے. اس کی کنسٹرکشن کسی اور بلڈر کو کر رہا تھا, وہ بیسیکلی ایک ہوٹل بنا رہا تھا, مگر پی سی بی نے اس پہ اپنی سیکیورٹی کنسرنز کا اظہار کیا اور بلڈر نے پھر ایڈوانس پیمنٹ لوگوں سے جنہوں نے وہ ہوٹل لیا تھا, انہوں نے اپنے لیے بکنگ کے لیے بکنگز بھی کروا لی تھی. بڑی بہترین جگہ ہے جو لوگ گلبرگ سے اور اس جگہ سے واقف ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہوٹل تو نہیں یہاں پہ تعمیر ہوگا, مگر اکوموڈیشن ایشوز جو پلیئرز کے ہیں, ٹیم آپ کی چل نہیں رہی, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, آپ تو بلکہ ان کو سزا دینے کے لیے ان کے ٹی اے ڈی ایز بند کریں. تو اب سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہوٹل کا اس جگہ پہ وڈ ناٹ اونلی ایڈریس دی اکوموڈیشن ایشوز فار دا پلیئرز بٹ آلسو ریڈیوز دا فائنینشیل برڈن. پی سی بی اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کی وجہ سے ہمارے فائنینشیل برڈن کم ہو جائے گا. This is another. It's old news. April ki news hai. Magar kyunki meri subah naaz se iski taraf tawajjuh mabzool karai, to I thought it is better to share with you. Hamare chand ek sponsors ka paigham dena chahti hu. Sabse pehle main ye batana chahti hu, Eid ul Azha ki bahut mubarak baat. Universal Promotion aapko Eid ki mubarak baat dete hain. Universal Promotion and Gondal Brothers. جناب وقاص گوندل گوندل برادرز آپ کو عید کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں وہ لوگ جو کیلکولیٹڈ مون کے لحاظ سے اتوار کے دن عید کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کو عید کی نماز سیلیبریشن سکیئر پہ نماز ادا کرنے والے کون ہیں نماز ادا کرنے والے امام ہیں مسجد القباء کے مسجد القباء اگر آپ تاریخی حقیقت دیکھیں تو مدینہ پاک کی یہ دو بڑی مسجدیں ہیں مسجد قباء مسجد نبوی مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مدینہ پاک پہنچنے پہ تعمیر کی تھی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی ایک زمانے میں یہ چھوٹی سی مسجد تھی اب تو خیر بہت واسٹ ہو گئی ہے تو یہ وہ مدینہ پاک میں پہلی مسجد تھی اس کے امام جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں شیخ محمد سفر ان کا نام ہے شیخ محمد سفر آپ بلکہ ان کی بایوگرافی دیکھ سکتے ہیں آن گوگل اگر آپ کریں جو میں کہہ رہی ہوں سچ ہے سچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں شیخ محمد سفر وی آر لکی انف دیٹ ہی از ہیئر ان ٹورنٹو تو وہ نماز عید الاضحیٰ کی امامت کرائیں گے اتوار کے دن جو کہ 16 جون کی تاریخ بنتی ہے یونیورسل پروموشن اس کا مکمل انعقاد کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مساجد کو آپ وہ ٹائم سیل کر کے دے سکتے ہیں مگر نو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یونیورسل پروموشن نے اس وینیو کو کیونکہ بک کیا تھا تو انہوں نے کہا وائی ناٹ کے ایک بڑے شخص کے ذریعے کی امامت پہ نماز عید الاضحیٰ کا بندوبست کیا جائے دس از آن سنڈے صبح 10:30 بجے 10:30 پہ شیخ محمد السفر جو ہیں قاری شیخ محمد السفر نماز عید کی امامت کریں گے آپ نے آنا ہے ڈونٹ نیڈ ٹو کال اینی بڈی بے شمار پارکنگ ہے سیلیبریشن اسکوئر میں آئیے نماز عید کے لیے تشریف لائیے 16 تاریخ کو فنکشن اسٹارٹ ہوگا دوپہر 12 بجے کے قریب مگر 10:30 بجے کے بعد آپ وہاں پہ آ کے بلکہ عید کا آدھا دن بھی منا سکتے ہیں اینڈ دیٹ از شام میں کانسرٹ ہوگا جس میں امانت علی اپنی پرفارمنس دیں گے عید مبارک ٹو ایوری بڈی عید الاضحیٰ کی بہت مبارک بات اور الحمدللہ آج کا دن بھی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو پہنچے امان کو ان کی حج کی سعادت کو قبول فرمائے آمین ثم آمین ولیجز پہ بھی عید کے حوالے سے بہت سے آپ کے لیے انتظام ہے اگر آپ نے عید کا ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ یعنی گھر آ کے برتن دھونے کا معاملہ نہ ہو برتن صفائی کرنے کا معاملہ نہ ہو میں تو کچن میں سے چل کے بھی جاتی ہوں نا تو چار چیزیں مجھے زمین پہ گری نظر آتی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں میں پگھل کے نیچے گرتی جا رہی ہوں یا میں جھڑ جھڑ کے نیچے گرتی چلی جا رہی ہوں اٹ ہیپنس ٹو می تو بہرحال کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آئیے ولیج ٹیسٹ پہ عید الاضحیٰ کا کھانا کھانے کے لیے آئیے آپ پہنچیے ولیج ٹیسٹ دو لوکیشنز پہ آپ کو سروس دیتے ہیں ان کی ایک برانچ اوکویل میں لیک شور پہ ہے 2294 لیک شور پہ اور ایک برانچ ان کی 4141 ڈکسی روڈ پہ ہے فیصل چٹھا صاحب آپ لوگوں کے منتظر ہیں پلیز کم عید سیلیبریشن کے لیے کہاں پہ آپ نے آنا ہے یو گاٹ ٹو کم ان ولیج ٹیسٹ اچھا میں اب آپ کے ساتھ ایک بڑی ضروری میں پہلے دن آپ کے ساتھ بات کرنے لگی ہوں مسلم ویلفیئر سینٹر میں اپنی بات کو جو زور دینا چاہوں گی بعض اداروں کے اوپر ہم اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں مسلم ویلفیئر سینٹر آپ نے اگر اپنے طور پہ قربانی کرنی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ 30% قربانی کا مسلم ویلفیئر کو دیجیے گا وہ گوشت کسی کے منہ میں جائے گا بے شمار لوگ اب آپ بھی سڑک پہ ڈرائیو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ ہائی وے سے آپ ایگزٹ لیتے ہیں اگین ڈونٹ سے کہ جو بھی ہیں میرا خیال ہے میں بھی خاموش رہوں تو بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا پردہ رکھے آمین سما آمین مگر بے شمار لوگ ہیں اگر میں اور آپ سوچ کے اپنی گروسری کرتے ہیں تو آپ سوچیے جس کی انکم کم ہے اس کا کیا صورتحال ہوگی تو مسلم ویلفیئر سینٹر میں بے شمار لوگ انحصار کرتے ہیں اینڈ دس از ناٹ اونلی مسلم ویلفیئر سینٹر آپ ٹورنٹو اسٹار اٹھا کے پڑھ لیجئے گا آپ کوئی بھی میگزین اٹھا کے دیکھ لیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں پورے کینیڈا میں फूड के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन पर डिपेंडेंस लोगों की बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। वो लोग मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जाते हैं जो कि 100% हलाल गोश्त लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कुर्बानी का तीसरा हिस्सा मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को दीजिएगा। आपकी सहूलत के लिए स्कार्ब्रो में भी है, मिसिसागा में भी है, और इवन दो अगर आपको ट्रेवल भी करना पड़ता है, ड्राइव भी करना पड़ता है, तो सर अल्लाह ने आपको दिया वगैरह, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो यकीनन आप साहिब हैसियत हैं। बेशुमार लोग जिनके पास नहीं है, हकीकत में नहीं है। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर MW कैनेडा, मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा। तो मैं अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बच्चा तुम ना ऐसा करो पैलेस्टाइन को दो, बल्कि हंस रही थी अपने दिल में ना कि बच्चे कितने चलाक है ना, अब आप देखिएगा पैलेस्टाइन में। तो मुझे कहने लगा, अगले दिन मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा बेटा आपने कुर्बानी अपने अल्लाह ने आपको आप दे सकते हो कुर्बानी, तो मैंने उनको पैलेस्टाइन का कहा था। तो मुझे कहते नो मामा आए कि कुर्बानी टू यमन, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा यमन की प्राइस बहुत कम थी, तुमने इसलिए कम की दी है। कहता अल्लाह नोज माई नियत मामा, नॉट फॉर दिस, बिकॉज यमन में भी बहुत प्रॉब्लम है, इस वक्त यमन भी वॉर को फेस कर रहा है, यमन में तो फिर भी कुर्बानी हो रही है, अलबत्ता पैलेस्टाइन में आई एम लिटिल डाउटफुल। इज राइट, इट गेव मी अ लॉजिकल आंसर। मगर अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, रोहिंग्या, सोमालिया, यमन, पैलेस्टाइन, कहीं भी कुर्बानी करना चाहते हैं, तो मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को अब भी आप उनकी वेबसाइट पे आइएगा, अपनी कुर्बानी का एक कुर्बानी अगर आप कर सकते हैं। अल्लाह आपको और मेरी नीयत को बेहतर समझते हैं, अल्लाह ताला मेरी और आपकी नीयत को बेहतर समझते हैं। खुदा मुझे और आपको इतना रिस्क अता फरमाए अपनी जनाब से कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मेरे रिस्क ममालिक के लोगों के लिए अल्लाह ताला मेरे और आपके रिस्क में हिस्सा भेजे, आमीन। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर www.mwcanada। जनाब मोहम्मद रेहान जनरल मैनेजर है। मोहम्मद रेहान कोई नए नहीं है, इस बच्चे ने भी अपनी लड़कपन जवानी और जवानी से अभी तो मतलब इज अ यंग बॉय बट स्टिल यू नो व्हाट आई हैव सीन, वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। मेजर साहब के साथ, उनकी बेगम साहिबा के साथ इन्होंने काम शुरू किया था और परसिस्टेंस है कि आज भी माशाल्लाह ही इज देयर। रेहान मोहम्मद रेहान, अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अजहा की बहुत मुबारकबाद आपको बेटा।
जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका आपने ऑन में ये लिया।
बहुत शुक्रिया। मैं अपने हर भाई बहन से, जो प्रोग्राम आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, कम ऑन द वेबसाइट www.mwcanada, आप अपना कुर्बानी का हिस्सा डालिएगा। देखिए पाकिस्तान 105 में काओ में शेयर डाल सकते हैं, बांग्लादेश 125 में काओ में शेयर डाल सकते हैं, इंडिया $70 में काओ में शेयर, अफगानिस्तान 125, रोहिंग्या 125, सोमालिया जस्ट 75 सोमालिया में, और आपको पता है सोमालिया में भी कितना भूख और अफलास का मामला है, पैलेस्टाइन 355 क्योंकि जो सूरत हाल है वहां की, इसी तरह गोट का। तो मोहम्मद रेहान आप थोड़ा सा मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के बारे में बताइए, और मेरी अपने हर भाई बहन से रिक्वेस्ट है जितने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अगर आपने कुर्बानी खुद करनी है अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत देर जरूर कीजिएगा, मगर अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो कॉल मुस्लिम वेलफेयर सेंटर एंड डोनेट फॉर कुर्बानी राइट नाउ। MW कैनेडा इनकी वेबसाइट है। जी रेहान अब आप बात कीजिए।
जी अल्लाह का शुक्र है, मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा लास्ट 30 ईयर से कुर्बानी और GTA के अंदर बहुत सारी सर्विसेज करता है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, जिसमें फूड बैंक है, शेल्टर है, सूप किचन है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में भी फूड बैंक है और फ्री मेडिकल क्लिनिक है, और ओवरसीज में हमारे सपोर्टेड चाइल्ड और वाटर एक्सप्लोरेशन और डिजास्टर रिलीफ का प्रोग्राम होते हैं, कि उसमें हम लोग यहां से जो हजरात मुस्लिम वेलफेयर सेंटर पर ट्रस्ट करते हैं अपने ज़कात सदका फितरा मनी के थ्रू सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग वो काम वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है टाइमली बेसिस पे अंजाम देते हैं। तो सिलसिले में कुर्बानी का भी यही सिलसिला है जो लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 30 ईयर से चल रहा है और लोगों का ट्रस्ट है जो इसको हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो पाकिस्तान में $105 का शेयर इन काव है और $200 का कोट है और ये सारे पाकिस्तान में हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है दफा और हमने सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऑलमोस्ट लाइक 20+ एरियाज चूज किए हैं जिसमें पंजाब के हैं, केपीके के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के एरियाज हैं। तो हमारी जो टीम है वहां पे जो ऑन द ग्राउंड है ये बिल्कुल डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट में है और इंशाल्लाह आपकी जो कुर्बानी के प्लाजेस हैं, कुर्बानी की जो इरादा है इंशाल्लाह वो वहां पर टाइमली बेसिस में और गारंटेड वहां पे हो जाएगा और इंशाल्लाह जो वहां पे मुस्तहीन है तो गोश्त जो कुर्बानी का एक बहुत बड़ा एक होता है ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त शेयर होता है क्योंकि बहुत वहां पे भी फूड प्राइसेस बहुत आई हैं, लोग बहुत ज्यादा गुर्बत की में रह रहे हैं तो ये कुर्बानी के गोश्त के थ्रू वो इंजॉय भी करते हैं और उसकी ब्लेसिंग आप सबको जो हजरात इसमें हिस्सा डालते हैं सबको मिलती है। तो बेस्ट ये कि अब हमारे जो वेबसाइट है mwcanada.org पे जाके आप टाइमली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट हमारी कुर्बानी जो बुक करने के लिए वो कल तक की रखी June 15th इंशाल्लाह और June 16th को हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में June 17th को कुर्बानी है तो हम लोग वहां पे टाइमली बेसिस हमने ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। तो सामिन से ये रिक्वेस्ट है कि डू नॉट डिले, गो टू द वेबसाइट और कॉल अस
سامعین ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مسلم ویلفیئر کینیڈا کے جناب محمد ریحان صاحب جنرل مینیجر ہیں مسلم ویلفیئر کینیڈا کے۔ مسلم ویلفیئر کینیڈا جو ہے از اے ڈویژن آف مسلم ویلفیئر سینٹر آف ٹورانٹو۔ پر زمانے سے آپ مسلم ویلفیئر سینٹر کا نام لے رہے تھے، دے آر آل دا سیم، مسلم ویلفیئر سینٹر، مسلم ویلفیئر کینیڈا۔ تو انہوں نے آپ کے بحاف پہ اگر آپ نے پاکستان میں قربانی کروانی ہو تو $105 میں ایک گائے کا حصہ ملے گا اور وہ آپ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ ان سے خدمت کروا سکتے ہیں اور آن یور بحاف دے آر گوئنگ ٹو ڈو دا قربانی فار یو، مسلم ویلفیئر کینیڈا۔ اور اگر آپ جی ٹی ایچ اے میں قربانی کروا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو قربانی کا تیسرا حصہ ہوتا ہے تو وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ایک کمرشل ہے جس کے اندر کہ نا لوگ اس کے سامنے جب لائیو ٹیلی ویژن پہ سب جا رہے ہوتے ہیں۔ اینی وے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا تھا اسٹوڈیو میں، آپ تو ٹی وی پہ نہیں ہے اس وقت، آپ کی تصویر حالانکہ ہم لگا رہے ہیں۔
چلے کوئی بات نہیں،
ان لوگوں کے لیے کیا ایک دفعہ اور بتا دیں آپ کے جو لوگ جی ٹی ایچ اے میں قربانی کروا رہے ہوں تو ان لوگوں کی آپ کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟
پہلے تو عامر بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے پکچر لگا دی، مسئلہ نہیں۔ اور جو حضرات سامعین سن رہے ہیں تو وہ بس یہ کہ جو حضرات یہاں پہ کرتے ہیں جی ٹی اے کے اندر قربانی کرتے ہیں اور تھرڈ پورشن وہ کسی بھی ادارے کو دینا چاہتے ہیں تو مسلم ویلفیئر کینیڈا کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ ہمارا ادارہ لاسٹ 30 ایئر سے فوڈ بینک کے اندر بہت کام کرتا ہے اور کافی آلموسٹ لائک لاسٹ ایئر 30,000 ٹائمز یا 30,000 فیملیز کو سپورٹ کیا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر۔ تو بالکل ہمیں اور ہمارے آفیسز اور فوڈ بینک اوپن ہوں گے 7 days a week انشاءاللہ 9 to 5:30، تو آپ قربانی کا تھرڈ میٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ میٹ جب لاتے ہیں تو بڑے پیکٹس میں نہ لائیں، چھوٹے پیکٹس بنوا لیں یا پھر بڑے پیکٹس لائیں تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں کیونکہ ہم چھوٹے پیکٹس کو اس کو فریز کرتے ہیں تاکہ وہ جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فروزن شیپ میں تو وہ ٹائم کو اچھے کنڈیشن میں لوگوں کو گوشت ملے، جو پک کرتے ہیں جو آتے ہیں بعد میں تو وہ فروزن شیپ میں لے کے جائیں گوشت کو۔ تو پلیز ڈونیٹ مسلم ویلفیئر کینیڈا، اگر آن لائن جا کے اور یا تو ان پرسن میں آپ ڈراپ کر سکتے ہیں قربانی کا جو میٹ دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، مسلم ویلفیئر کینیڈا کے آفس میں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس مسیساگا میں ہے، 3490 میویس روڈ، میویس اینڈ سینٹرل پارک میں، اور اس کے علاوہ 100 میکلیون ایونیو اسکارپرو کے اندر ہے نیئر نگٹ ماس اسلامک فاؤنڈیشن، اور وڈبی کے اندر دو لوکیشن ہے 432 ڈنڈاس اسٹریٹ اور 732 ڈنڈاس اسٹریٹ، تو وہاں پہ بھی آپ انشاءاللہ اپنا قربانی کا گوشت ڈراپ کر سکتے ہیں۔
जरूर करें साहब, जरूर करें। हमारी इल्तिजा, हमारी गुजारिश है कि मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा पूरे साल के 365 डेज ये आपके लिए आपके बिहाफ पे नीडी लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये एक और रास्ता अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दिया हुआ है, इनके दरवाजे खुले हैं। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पूरे साल इनकी इनके लिए कुछ ना कुछ अपनी ग्रोसरी में से कुछ ना कुछ इनको जरूर दें। मगर अगर पूरे साल नहीं होता तो कम से कम जब कुर्बानी करवा रहे हैं आप तो उसका तीसरा हिस्सा जो अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है कि वो तीसरा हिस्सा जो है वो आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को दे दें। अगेन mwcanada.org, MW इनके इनिशियल्स है मुस्लिम वेलफेयर के, mwcanada.org पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और कुछ ऐड करना है आपको रेहान?
नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। और बस ये कि इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट से, सामान की सपोर्ट से अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम वेलफेयर सेंटर डिलीवर करता है हर प्रोजेक्ट को, और इस तरह कुर्बानी का जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग की मदद चाहिए। तो दिल खोल के आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को की मदद करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, और मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक है।
हमारी तरफ से आप तमाम को, जो लोग बड़ा बहुत नेक काम कर रहे हो आप लोग, आप तमाम को हमारी तरफ से आपके और आपकी फैमिलीज को ईद मुबारक।
जज़ाकअल्लाह,
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रेहान से हमने आपकी बातचीत करवाई और अब 3:49 ऑलमोस्ट 4:30 30 सेकंड कम। तो चलिए साहब, ये चलता हूँ आपको मैं टॉप ऑफ द आवर हमारे स्पॉन्सर्स के पैगाम, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहन दे वास्ते न्यूज़ इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप।